पर यह जो हमारा अहम इतनी किरकिरी पैदा कर रहा है, ईश्वर के संदेश को दबा दे रहा है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि उपनिषदों के जो ऋषि थे, जो अनुभवी थे, संत थे, महात्मा थे, ये कैसे थे? जिन्होंने अपने अहम को पूरी तरह से विलीन कर दिया था, इसीलिए उनके माध्यम से प्रभु बोलते थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम चस्पा कहीं नहीं किया। ऐसे ये उपनिषद, ऐसे ये शास्त्र। तो पहले मंत्र में मानो सिद्धांत रखा गया, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृह कस्य सिद्धनम। जहां पर हमने कहा था कि लोभ की वृत्ति पर प्रहार है, मानो इस उपनिषद का मुख्य स्वर लोभ की वृत्ति का नाश। किसका लोभ करते हो? धन का लोभ करते हो? धन कितने समय तक तुम्हारे साथ रहेगा? अरे तुम्हारा सबसे प्यारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं रहता, वह तुम्हारा साथ छोड़ देता है। तो तुमने जो कमाया धन है वह तुम्हारे साथ कहीं जाएगा? थोड़ा विचार तो करो। कस्य धनम, किसके धन का तुम लोभ करते हो? यह यहां पर कहा गया है। और दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं? पहले मंत्र में कहा कि उसी त्याग के द्वारा भोग करो। भोग करने से मना नहीं कर रहे हैं, पर कैसे? उस त्याग के द्वारा। कौन सा त्याग है? कि भाई ईशावास्यम दो प्रकार से हमने व्याख्या की थी, एक ज्ञान परक, दूसरी भक्ति परक। ज्ञान परक ईशा आवास्यम, ईशा के द्वारा, भगवान के द्वारा, उस परम तत्व के द्वारा सब कुछ को ढांक लो, यह कहा गया था। और भक्ति परक में ईशावास्यम, हर हृदय भगवान का बैठक खाना है, जहां भी देखो वहां भगवान विराजित हैं। यह भक्ति की दृष्टि है, अभी मैं संसार को देखता हूं। और अगर इसका अनुशीलन करूं, इस उपदेश का जो दिया गया है मुझे पहले मंत्र में, यदि मैं ज्ञानात्मक उपदेश को लेता हूं तो मैं ईश्वर से ढाक करके संसार को देखता हूं, यही त्याग है। और यदि मैं भक्त्यात्मक उपदेश को ग्रहण करता हूं तो संसार के भीतर में प्रभु को विराजित देखता हूं, यह त्याग है। अभी संसार को देखता हूं, अभी संसार में प्रभु को बैठा हुआ देखता हूं, यह जो त्याग भरी दृष्टि है मेरी, उस त्याग भरी दृष्टि से भोग करो, भुंजी था यह करो। श्री रामकृष्ण देव जैसा कहते हैं, अरे क्या लड़के बच्चों को, पत्नी को कुएं में फेंकने की बात कह रहा हूं? क्यों करोगे ऐसा? कहां जाओगे? संसार कहां तुम्हें छोड़ करके जाएगा? तुम कहां जा सकते हो संसार को छोड़ करके? घर में बच्चे हैं, पत्नी है, पति हैं, सबको प्यार करो, सबके भीतर में प्रभु का प्रकाश देखने का प्रयास करो, श्री रामकृष्ण कहते हैं। यही तो ईशावास्योपनिषद की बात है, जो ये संत, ये महापुरुष, ये अवतारी जन हमारे समक्ष कहते रहे। और दूसरे मंत्र में कहा कि कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा एवं तो नान्य थे तोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। अरे डरते क्यों हो? कर्म का लेप नहीं होता? 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, यह विलक्षण उपनिषद है। थोड़े से मंत्रों के द्वारा कितनी गूढ़ बात कह दी गई है। कल मैंने आपके समक्ष कहा था वेदों के दो भाग हो गए, एक कर्मकांड जिसको मीमांसा या पूर्व मीमांसा कहा गया, और दूसरा ज्ञान कांड जिसको उत्तर मीमांसा या वेदांत के नाम से पुकारा गया। और दोनों में झगड़ा, कर्म कांड और ज्ञान कांड का झगड़ा। कल हमने आपके समक्ष मुंडक उपनिषद की बात रखी थी, जहां पर ये चिंतक किस्म के लोग, ये ज्ञानी लोग जाकर के निंदा करते हैं कर्म की, कहते हैं अरे तुम 18 लोग जो इस यज्ञ को नौका समझते हो, भवसागर को पार करने के लिए, तुम मूढ़ हो, तुम मरोगे, यह नौका जीर्ण शीर्ण है, तुम्हें मझधार में डुबो देगी। झगड़ा दिखाई देता है। जो कर्मकांडी थे वे ज्ञानकांडी के जो लोग थे उनकी निंदा करने लगे, जो ज्ञानी थे उन्होंने कर्मकांडियों की निंदा की, यह उपनिषद आता है। दोनों में समन्वय का सेतु स्थापित करता है, कहता है तुम लोग झगड़ते क्यों हो? अरे कर्म और ज्ञान ये तो दोनों रास्ते हैं उस परम तत्व के पास जाने के लिए। ज्ञानी से यह उपनिषद कहेगा
बिना कर्म के क्या तुम चल सकते हो, और कर्म से कहेगा बिना ज्ञान से तुम क्या आगे बढ़ सकते हो। ज्ञान यदि आंखें हैं तो कर्म पैर हैं। क्या आंखें बिना पैर के जा सकती हैं? क्या पैर बिना आंखों के चल सकता है? वह कहां ले जाकर के हमें गिरा देगा? तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि देखो तुम दोनों झगड़ा मत करो, ज्ञान हमारे भीतर में रहे और हम कर्म करते चले। विलक्षण है, कल जैसा मैंने कहा कि यहां पर भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय दिखाई देता है। यह पहला उपनिषद है जिसने ज्ञान और कर्म में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। यह वटवृक्ष है, समन्वय का वटवृक्ष, और यही वटवृक्ष का जो बीज है, यह बीज हमें एक महान वटवृक्ष के रूप में गीता में दिखाई देता है। तो जो बीज ईशावास्योपनिषद के रूप में हमें प्राप्त होता है वह एक महान वटवृक्ष के रूप में गीता के रूप में दिखाई देता है, वहां पर कर्मयोग के सिद्धांत के रूप में। पर उसका बीज कहां है? इस दूसरे मंत्र में जहां कहा गया है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो शतायुर्वै पुरुषः, जहां 100 वर्ष तक पुरुष जीता है, यह वेद की वाणी है। तो वेदों ने 100 वर्ष की आयु सीमा हमारे लिए रखी है, तो तुम पूरी आयु जियो। कैसे जियो? कुर्वन्नेव इह, इस जीवन में कर्म करते हुए ही भागो मत। भाग करके कहां जाओगे? कर्म करो। भाव क्या रहे? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग का भाव रहे। कैसा त्याग का भाव? वही या तो ईश्वर से आच्छादित कर दो या फिर सबके भीतर में प्रभु को विराजित देखो और यह भाव लेकर के संसार के कर्म करते चलो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तब फिर कहा कि असुरिया नाम थे लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। तुम आत्मघाती बन जाओगे, तुम आत्मा का हनन करोगे और गहरे अंधकार से भरे लोकों में जाओगे। यदि तुमने यह बात नहीं सुनी तो, ऐसा कहा तो प्रश्न उठा। मैंने कल कहा था कि यहां पर शिष्य कहां है यह पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि गुरुजी उपदेश देते हुए जा रहे हैं और शिष्य की उपस्थिति का भान नहीं हो रहा है। वह भान होगा कुछ आगे चल करके। अभी तो गुरुजी मानो बता रहे हैं, तत्व बता रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न उठा होगा शिष्य के मन में कि गुरुदेव आपने कहा कि ऐसा न किया जाए तो फिर मनुष्य आत्मघाती बनता है। आपने पहले मंत्र के माध्यम से हमारे समक्ष विचार रखा, दूसरे मंत्र में उसका आचार और व्यवहार रखा, पहले मंत्र में आपने सिद्धांत की बात कही, दूसरे मंत्र में आपने उसके प्रयोग की बात कही, पहले मंत्र में आपने शास्त्र समझाया, दूसरे मंत्र में आपने कला समझाया। तो मानो यह शास्त्र और कला का समन्वय, यह विचार और आचार का समन्वय, यह जिसे कहेंगे सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय आपने तो किया। तो अगर ऐसा कोई न करे, आत्मघाती बन जाए, तो वह आत्मा क्या है जिसका वह घात करता है? तो कहा ठीक है, आत्म तत्व वत्सो, कैसे समझाऊं? वाणी के द्वारा उसे कैसे समझाऊं जो अवांग मनस गोचर तत्व है, जो तत्व वाणी के द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता, जो मन का विषय नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति नो मनः, जहां पर मानो यह मन जा नहीं पाता और जहां से लौट करके चला आता है वाणी को साथ में लेकर के, कौन कैसे बताए? क्यों? वाणी तो मन का ही अनुवर्तन करती है ना। यह जबान यह शब्द मन के ही तो पीछे पीछे चलता है। वाणी मन का अनुवर्तन करती है, इसका मतलब कि पीछे पीछे चलती है। मन में जो विचार स्पंदित होता है वाणी उसे शब्दबद्ध करके प्रकट कर देती है। अब मन ही विचार न कर पाए तो वाणी बेचारी क्या करेगी, वह फिर कैसे बताएगी? तो इसीलिए कहा आत्मतत्व ऐसा जिसको कैसे समझाया जाए। फिर भी समझाना तो पड़ेगा ही, ऐसा कहने से तो नहीं बनेगा, कुछ न कुछ रूपरेखा देनी होगी। इसीलिए रूपरेखा देखें, क्या देते हैं? चौथे मंत्र में कहते हैं अने जदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आप्तुवन पूर्व मर्षत तद्धावतोन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वादधाति। यह शब्द कठिन है, समझने कठिन है, मैं समझाने की चेष्टा करूंगा। इसका अर्थ अनेजदेकम अनेजत माने इसमें एजन नहीं है, कंपन नहीं है, यह हिलता डुलता नहीं है, तो यह अकंपनशील है, इसमें कोई कंपन नहीं है। एकम वह एक है, वह आत्मतत्व, उसमें दो नहीं है, वह एक ही है। और वह एक तत्व कैसा है? कहा गया कि वह अनंत है। अनंत की जो हमारी कल्पना और धारणा है, तो दो अनंत तो हो नहीं सकते। आप देखेंगे यदि हम दो अनंत की बात स्वीकार करें, देन वन इन्फिनिट वुड लिमिट द अदर, तो एक अनंत दूसरे अनंत को सीमित करेगा। कहां पर एक अनंत खत्म होता है, कहां से दूसरा अनंत शुरू होता है? इसीलिए दो अनंत माने वह फैलेसी है, वह भ्रम है, एक ही अनंत होता है। तो आत्मतत्व एक है क्योंकि वह अनंत है, अकंपनशील है। अकंपनशील है का मतलब कंपन किसका होता है? जैसे स्पेस या देश, इसके भीतर में कंपन, इसका मतलब कि जो स्पेस में समा जाए उसमें कंपन हो सकता है। पर जो स्पेस स्वरूप ही है, कल्पना कीजिए कि यह जो हॉल है इतना बड़ा, इसमें कंपन कौन सी चीज का हो सकता है? हॉल से आकार में कोई चीज छोटी हो, हॉल में रख दें और उसको हिला दें तब तो कंपन होगा। और मान लीजिए हॉल के इतनी बड़ी कोई चीज यहां ला दी गई, उसका कंपन होगा क्या? कहां होगा, क्योंकि वह तो हॉल के साइज की है, उसमें फिट हो गई है, उसमें कंपन हो ही नहीं सकता। यह बहुत भौतिक उदाहरण है, समझने के लिए दे रहा हूं। ठीक इसी प्रकार यह जो आत्म तत्व है अनंत है, सर्वव्यापी है, जहां भी नजर जाए वहां पर वह आत्म तत्व ही है, तो कंपन कहां से होगा? कंपन तो छोटी चीज में हो सकता है जो उसके भीतर में सीमित है। तो कहा गया कि वह कंपन अकंपनशील है, एक है, मनसो जबियो, वह मन से अधिक गतिमान है। अभी कहा अकंपनशील है और अभी कहा कि मन से अधिक गतिमान है, ये विचित्र बात है। नैन देवा आप्तुवन पूर्वमर्शत, देवता उसे प्राप्त नहीं कर सके। देवता माने देव द्योतनवताम, ये जो प्रकाश देने वाले, ये इंद्रियां, इंद्रियां हमको प्रकाश देती हैं। जैसे नेत्रेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, इससे हमें रूप दिखाई देता है। कर्णेंद्रिय है, इससे शब्द का ज्ञान होता है। घ्राणेंद्रिय है, इससे गंध का बोध होता है। स्पर्शेंद्रिय है, इससे हमें कोई पदार्थ ठोस है या नरम है, कोई पदार्थ गर्म है या कोई पदार्थ ठंडा है, इसका बोध तो छू करके होता है। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय है, इसे स्वाद का बोध होता है कि कोई वस्तु कड़वी है न मीठी है, ये सब ज्ञान है। तो जो ज्ञान देता है उसको देव कहते हैं, देव द्योतनशील, दिवी प्रकाश। तो ये इंद्रियां प्रकाश देती हैं। तो ये जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं पांच, इन ज्ञानेन्द्रियों को देव कहा गया है। तो नैनत देवा आपनुवन, ये ज्ञानेन्द्रियां नहीं पकड़ पाई। और पूर्वमर्शत, वह मानो उनसे भी आगे गया हुआ है आत्मतत्व, इन इंद्रियों से भी आगे गया हुआ है। तो मनसो जवियो, मन से भी अधिक गतिशील, इसका मतलब मन तो पकड़ ही नहीं पा रहा है। जब इस भाषा में बता दिया गया कि वह आत्मतत्व मन से अधिक गतिशील है, उससे अधिक वेगवान है, इसका मतलब कि मन उसको पकड़ नहीं पाएगा। और ये देव पकड़ नहीं पाए, ये ज्ञानेन्द्रियां पकड़ नहीं पाई, क्योंकि यह ज्ञानेन्द्रियों से आगे गया हुआ है। जब भी ज्ञानेन्द्रिय पकड़ने के लिए जाती है, देखती है कि आत्मतत्व तो आगे ही गया हुआ है, ऐसा यह आत्मतत्व है। तद धावत अन्यान्येति तिष्ठत, वह दौड़त, यह कहते हैं कि वह तिष्ठत, खड़े होकर के, स्थिर होकर के, भागती हुई चीजों को पार कर लेता है। स्वयं नहीं भाग रहा है, स्वयं खड़ा है, परंतु जो चीजें भाग रही हैं उनको खड़े रह करके, स्थिर रह करके पार कर लेता है। तद धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत, तस्मिन अपो मातरिश्वादधाती, तस्मिन उसके होने के कारण, उसकी बुनियाद में, उसकी नींव पर खड़े होकर के, यह जो मातरिश्वा है जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, यह इसकी कल्पना आपके समक्ष मैं दूंगा। यह जो ब्रह्मा जो सृजन करने वाला, यह जो तत्व, यह जो मातृश्वा है, तो मातृश्वा क्या करता है? अपह माने शक्ति देता है, सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति, ताप देने की शक्ति। इसी प्रकार भिन्न भिन्न, जैसे मेरी इंद्रियों में शक्ति है, यह जो नेत्रों में देखने की ताकत, कान में सुनने की ताकत, तो यह जो ताकत है उसको अपह कहते हैं। तो भिन्न भिन्न ये जो शक्तियां हैं जिसके कारण संसार चल रहा है, शक्तियों का बोध हमें होता है, तो यहां पर कहा गया यह अपह है, इसको कौन देता है? मातृश्वा देता है। और मातृश्वा कैसे देता है? तस्मिन अपह, वह जो आधार स्वरूप आत्मतत्व है उसके कारण मातृश्वा ये शक्तियां प्रदान करता है। अब दो तीन बातें यहां पर विचारनी है। पहली बात तो यह है कि ये भी अधिक गतिमान है। फिर कहा कि वह खड़े होकर के भागती हुई चीजों को पार कर लेता है, यह तो विचित्र है, अटपटा है, विरोधी गुण है। तो देखिए विरोधी गुण ये केवल आत्म तत्व के संदर्भ में ही सत्य नहीं है, विज्ञान के संदर्भ में भी सत्य है। विज्ञान के क्षेत्र में भी हम देखते हैं जहां पर कोई कॉन्सेप्ट बड़ा जटिल हो जाता है तो उसको मानो इस जिसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, इसको वैतर्किक प्रणाली कहा है, प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स उसके माध्यम से उस तत्व को रखने की चेष्टा करते हैं। आप पूछेंगे कि प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स क्या है, विपरीत गुणों के माध्यम से किसी बात को समझाने की प्रक्रिया क्या है, यह वैतर्किक प्रणाली क्या है? जैसे आप जानते हैं अब यह जो इलेक्ट्रॉन है, अब यह जो इलेक्ट्रॉन है कैसे वर्तन करता है? आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं यह पार्टिकल के रूप में वर्तन करता है या वेव के रूप में वर्तन करता है, यह कणात्मक है या तरंगात्मक है? यह तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विवाद का विषय रहा। एक समय रहा जब कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रकाश के क्षेत्र में आई, यह माना गया कि यह प्रकाश की किरण जो जाती है वह कणात्मक है। फिर उसके बाद आया तरंगात्मक, और अभी जब इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में अनुसंधान हुए तो उनको क्या लगा, यह जो इलेक्ट्रॉन है कभी कभी तो उसका वर्तन होता है पार्टिकल के रूप में और कभी उसका वर्तन होता है वेव के रूप में। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नया शब्द गढ़ा, आप जानते हैं वह वेविकल, माने यह इलेक्ट्रॉन कैसा है भाई, वेविकल है, माने वेव का वेव ले लिया, पार्टिकल का इकल ले लिया, माने दोनों ही विपरीत गुण उसमें दिखाई देते हैं। तो जब विज्ञान के क्षेत्र में वैतर्किक प्रणाली के माध्यम से, प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स के माध्यम से किसी तत्व को समझाने की चेष्टा की जाती है, तब तो यह आत्म तत्व उस इलेक्ट्रॉन से भी अधिक सूक्ष्म है। उसको समझाने के लिए यदि यहां पर वैतर्किक प्रणाली का सहारा लिया गया हो तो दोष हम क्यों दें? यही एक प्रणाली है जिसके माध्यम से इन विपरीत गुणों वाले, विपरीत धर्म वाले तत्व को समझाया जा सकता है। तो एक तो बात यह हो गई, और दूसरी बात हो गई कि जहां पर यह कहा गया कि मन से वह अधिक गतिशील है, इसका मतलब क्या है? यह जो मन काम करता है कैसे करता है, इंद्रियां जो काम करती हैं कैसे करती हैं? आप पढ़ते हैं, जैसे पहले हम लोग मानते थे विज्ञान के क्षेत्र में ईथर को, एक ईथर हमने मान लिया। ये ईथर क्या है? ईथर एक हमने एक कॉन्सेप्ट ऐसा ईथर का ले लिया जिसके कारण मानो यह जो हीट है या जैसे चौंबकीय शक्ति है, तो यह इसका प्रसारण होता है एक माध्यम के रूप में, एक मीडियम के रूप में, एक हाइपोथेटिकल हमने ईथर की कल्पना की। ईथर हो है इसीलिए हीट का ट्रांसमिशन होता है, मैग्नेटिक जो हमारी धारणा है, जो चौंबकीय शक्ति है, एनर्जी है, उसका ट्रांसमिशन इस ईथर के कारण होता है, ऐसा हम मानते हैं। बीच के कुछ वर्षों में ईथर का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा था पर फिर से आ गया है। एक हम उसको मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में ऐसा स्वीकार करते हैं, उसके कारण ही मानो यह सारा ट्रांसमिशन होता है। ठीक यही बात आप इस एनालॉजी को लेकर के आत्म तत्व के संबंध में विचार कर सकते हैं। आत्म तत्व ईथर नहीं है, मैं नहीं को अंडरलाइन कर रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं, नहीं तो कोई फिर आप कह देंगे मुझसे आपने ही तो कहा था आत्म तत्व ईथर है, अरे ईथर नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए यह एनालॉजी दे रहा हूं, यह उपमा दे रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, यह जो आत्म तत्व है इसी ईथर के समान, वह मानो एक प्राइमोर्डियल ऐसा वह सब्सटेंस है जो सत्ता है, वही सत्ता है। और उस सत्ता के कारण क्या मन विचार करता है, मन में जो विचार के आंदोलन होते हैं कैसे होते हैं, उस सत्ता की अवस्थिति के कारण होते हैं। यह जो इंद्रियां देखती हैं वह ट्रांसमिशन जो है मीडियम वह कौन सा है, आत्म तत्व ही वह मीडियम है, वह माध्यम है जिसके कारण ये इंद्रियां देखने में सुनने में समर्थ होती हैं, संवेदना प्राप्त करने में समर्थ होती हैं। अब यदि आपने इस सर्वव्यापी आत्म तत्व का इस प्रकार से चिंतन किया तो आप देख लीजिए यह कैसा है, अनेजत, इसमें कोई कंपन नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी तत्व में कंपन क्या हो, और मनसह जबियो, वह मन से भी अधिक गतिमान है। मन उसको पकड़ने जाएगा कहां जाएगा, कहां जाएगा, अरे मन तो उसी में तैरता है, तो मन उसको पकड़ेगा कहां, जहां भी मन जाएगा देखेगा आत्म तत्व ही तो है। मैं समुद्र में नौका से जा रहा हूं, या किसी बड़े सरोवर में मैं नौका से विहार कर रहा हूं, और मैं जाता हूं सरोवर को पकड़ने के लिए, तो जैसे भ्रम ही है ना, जहां भी जाऊंगा सरोवर तो पहले से गया हुआ है, वह तो फैला हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार मन मानो यही तैरता है इसी आत्म तत्व में, तो वह जब पकड़ने जाता है आत्म तत्व को, वह क्या देखता है, अरे आत्म तत्व वह तो मुझसे भी आगे गया हुआ है। इंद्रियां जब पकड़ने जाती हैं आत्म तत्व को, तो आत्म तत्व मानो मानो अंडरलाइन मानो मुस्कुरा करके कहता है, तुम मुझे पकड़ोगी, अरे तुम तो मेरे ही वक्ष पर काम कर रही हो, माने इंद्रियां आत्म तत्व में ही तो खेलती हैं, तो आत्म तत्व को पकड़ेंगी कैसे, तो कहा गया वह पहले गया हुआ है आत्म तत्व पूर्व मर्षत। इंद्रियां जहां जाती हैं आत्म तत्व को पकड़ने के लिए, मानो आत्म तत्व पहले ही गया दिखाई देता है, वह तो है ही। तद धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत, वह खड़ा होकर के भागती ही सभी चीजों को पार कर जाता है। क्यों पार करता है, आत्म तत्व तो खड़ा है और उसी में तो सारी चीजें भाग रही हैं। इसका मतलब कि कितनी भी चीजें भागें, आत्म तत्व सबसे परे गया हुआ है, वह तो सब जगह विद्यमान है। तो यह बताने का तरीका है, वर्णन की शैली है। तो यह इस प्रकार से तस्मिन् तिष्ठत, आत्म तत्व खड़ा और ये भागती हुई चीजों को खड़ा होकर के पार कर लेता है, मानो यह कवित्व की भाषा है। और क्या कहा, तस्मिन् नपः मातरिश्वा दधाति, यह जो मातरिश्वा है, अब मातरिश्वा का एक थोड़ा सा अनुमान, यह मातरिश्वा की धारणा, यह मातृश्वा है क्या, यह जो शक्ति प्रदान करने वाला, इसको हम वेदांत की भाषा में हिरण्यगर्भ कहते हैं और पुराणों की भाषा में ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा हम कहते हैं। तो जो ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है वह मानो हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट, इसको हम यूं समझाएं कि देखिए यह ब्रह्म तत्व है, कल्पना कीजिए ब्रह्म तत्व है, और ब्रह्म तत्व वह एक ही है, जैसा कहा गया अनेजद एकम, अनेजत और एकम केवल वही है। अब वह जो एक है उसमें मालूम नहीं कैसे एक इच्छा उठती है, एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं मैं बहुत हो जाऊं, अब यह इच्छा कैसे उठी। वह जो तत्व है जिसमें किसी प्रकार की वासना नहीं कामना नहीं, यह इच्छा क्यों उठी, कैसे उठी, कब उठी, इसका उत्तर वेदांत के पास नहीं है। क्या पूछे कि क्यों उठी, तो कहता है वेदांती ऋषि कहते हैं हमें पता नहीं, हम तो केवल जो उठ गई उसके बाद की बात बता रहे हैं, पर कब इच्छा उठी, क्यों उठी, कैसे उठी, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। और इसीलिए वेदांत के क्षेत्र में लीला इच्छा कहते हैं, एक लीला इच्छा ब्रह्म में उठी, एक वो हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत हो जाऊं, तो उसने मानो जब बहुत हो जाऊं ऐसा उसने किया, इस प्रकार से अपने मन में इच्छा को लाकर के रखा, तो मानो एक शक्ति आ गई, इस शक्ति को कहते हैं माया, यही माया शक्ति है। अभी तक ब्रह्म है, कोई शक्ति नहीं है, मन में लीला इच्छा उठी, शक्ति आ गई, तो इस शक्ति के संदर्भ में उस ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। अभी ब्रह्म नहीं कहेंगे, ब्रह्म तब कहते हैं जब शक्ति उसमें लीन हो जाती है। पर जब शक्ति उसमें से प्रकट होती है तो उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर हरदम शक्ति के साथ संयुक्त होता है। अब ईश्वर शक्ति के साथ संयुक्त होकर के फिर विचार कर रहा है तो ब्रह्म पहला तत्व। ब्रह्म में इच्छा उठी, एक हूं अनेक हो जाऊं, मानो शक्ति जो भीतर थी लीन वह बाहर आई, और वह बाहर आते ही उस ब्रह्म का नाम हो गया ईश्वर। अब यह ईश्वर है शक्ति के साथ, तो शक्ति के साथ जो तत्व है वह है ईश्वर। ब्रह्म कहेंगे तो शक्ति नहीं है वहां पर, तो ईश्वर शक्ति के साथ। अब ईश्वर विचार करता है कि क्या क्या मुझे सृजन करना है, मन में योजना जो बनती है, तो यह जो मन में योजना बनी कि मैं ऐसा करूं, ऐसा सृष्टि का क्रम चले, तो इसको कहते हैं ब्रह्मा, इसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ, इसी को कहते हैं मातृश्वा। इसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए मैं एक जादूगर हूं, मेरा नाम है आत्मानंद। जब तक मैं मंच पर जादू दिखाने नहीं आया हूं तब तक लोग कहते हैं आत्मानंद, कहेंगे ये आत्मानंद है। मैं यहां पर जादू दिखाने के लिए मंच पर आता हूं, अभी तक मैं मंच पर नहीं आया था तब तक मैं आत्मानंद था। मैं मंच पर आता हूं जादू दिखाने के लिए तो मैं जादूगर बन गया, क्योंकि मैं मंच पर आ गया, मैं जादू दिखाऊंगा ऐसी कामना लेकर के। और जो ही मेरे भीतर में कामना पैदा हुई कि मैं जादू दिखाऊंगा, तो आत्मानंद अब जादूगर कहलाता है। अब आत्मानंद मंच पर खड़ा होकर के विचार कर रहा है, यह हो गया ईश्वर की उपमा है, या कि वह शक्ति से समन्वित हो गया। यह शक्ति जादू की शक्ति, यह है ईश्वर की तुलना। और उसके पश्चात वह वहां पर आत्मानंद जादूगर के रूप में खड़े होकर के सोच रहा है, मुझे क्या क्या जादू दिखाना है आज। तो यह जो मानसिक रूप से मैंने जादू का चिंतन किया, जादू के कर्तव्यों का, तो अब आत्मानंद की उपमा हो गई ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ। और जिस समय जादू दिखाना शुरू करता हूं लोग उसे देखते हैं, उसको कहते हैं विराट, जो स्थूल है, जो यह दिखाई दे रहा है, इसका नाम है विराट। तो यहां पर जो कहा गया है मातृश्वा, मन वही स्थिति जहां पर हमने मन में संजो लिया, तो ईश्वर ने संजो लिया कि क्या क्या सृष्टि करनी है, शक्ति देनी है, तो सूर्य को ताप और अग्नि प्रकाश की शक्ति है। इसी प्रकार हर चीज को एक एक शक्ति है, जैसे जल का धर्म है उसकी शीतलता है, प्रत्येक के पास शक्ति है उसका धर्म है। तो ये जो मातृश्वा है, मातृश्वा उसी के कारण, किसके कारण, ब्रह्म के कारण, ब्रह्म के कारण ही वह ईश्वर बना, ईश्वर शक्ति से समन्वित हुआ, ब्रह्म आधारभूत तत्व है, इसी के कारण वह मातृश्वा होता है। और मातृश्वा उस ब्रह्म के अधिष्ठान पर खड़ा होकर के मानो जगत सृष्टि की योजना बनाता है और शक्ति प्रदान करता है। तो कहा गया कि तस्मिन अपह मातृश्वा दधाति, या मातृश्वा देता है, यह अर्थ है इसका। तो आप समझ सकते हैं कि यह आत्म तत्व जटिल है, इसलिए विपरीत गुणों के माध्यम से आत्म तत्व का चिंतन किया गया। अब इसके बाद कहते हैं पांचवें मंत्र में, तदेजति तन्नएजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। फिर विपरीत गुण, विरोधी गुण, तदेजति वह कांपता है, हिलता डुलता है, तन्नएजति वह हिलता डुलता नहीं, उसमें कंपन नहीं है, तद्दूरे वह बहुत दूर है, तदुअंतिके वह अत्यंत समीप है, तदंतरस्य सर्वस्य वह सबके भीतर में है, तदु सर्वस्यास्य बाह्यता वही सबके बाहर में है, ऐसा यहां कहा गया। तो यह विपरीत गुण के माध्यम से उस जटिल आत्म तत्व के संबंध में एक झांकी प्रदान करना, तदेजति तन्नय एजति जो हमने आपके समक्ष समझाया ही था, एजति माने कंपनशील माने चर, और तन्नएजति अचर, तो चर में भी वही और अचर भी वही, वही चर है, वही मानो जिसे हम कहेंगे प्राणी है, प्राण है, और वही जड़ है। तो जहां जड़त्व देखते हैं वह भी आत्मतत्व, जहां पर हम प्राणन देखते हैं वह भी आत्मतत्व, चराचर जगत जैसा हम कहते हैं, चर और अचर जगत, जड़ और चैतन्यमय जगत, सभी उस आत्मा का खेल है, वही आत्मतत्व है, वह बहुत दूर है, वह बहुत समीप है। ये दोनों बहुत दूर हैं। मुझे बचपन की एक घटना याद आती है। मैं तब स्कूल में पढ़ता था, बाजू में मास्टर साहब रहते थे। किसी काम से माँ ने मुझे पड़ोस में भेजा मास्टर साहब के यहाँ। मैं गया और जाकर के मास्टर साहब की जो पत्नी थी वे रसोई में चौके में बैठी थी, रसोई बना रही थी, उनसे मैं बात कर रहा था। इतने में देखा कि मास्टर साहब हड़बड़ हड़बड़ करके खोज रहे हैं कुछ और चिल्ला रहे हैं, क्या तुम कितनी फूहर हो, कितनी बार तुमसे कहा कि टोपी ठीक ठिकाने रखो, और देखो समय हो गया है, 5 मिनट से मैं टोपी ही खोज रहा हूँ, टोपी मुझे मिल नहीं रही है। तो पत्नी ने रसोई से आवाज दी, अरे तुमने रखी होगी टोपी, देखो ना कभी तो तुम सिरहाने रख देते हो। अरे सब देख लिया, तकिया उठा के देख लिया, वह देख लिया, ऐसा देख लिया, सभी तो देख लिया, कहीं टोपी मिल नहीं रही है। बड़बड़ाते हुए वे आए रसोई घर में। पत्नी ने उन्हें देखा, कहा तुमने उस अलमारी में जो खूंटी है जहां पर दर्पण लगा हुआ है वो खूंटी ऊपर में उसमें तो टांग करके रखते हो।